ॐ अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो पिछली बार हमने साधना भक्ति के बारे में चर्चा किया था और आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे इस बारे में, ठीक है। तो साधन भक्ति का सार क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ साधन भक्ति? साधन भक्ति का सार क्या है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, प्लीज रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द एसेंस ऑफ साधन भक्ति? सार क्या है साधन भक्ति का? प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करिए। हाँ जी बोलिए यशोदा पुत्र। और कोई? यस, रिमेम्बर कृष्णा। यस, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स द होल आइडिया। So if you fix the mind on Krishna for any reason, will be purified. And Srila Prabhupada points out that Sri Chaitanya Mahaprabhu stressed which sadhana to be the most powerful. कौन से साधन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे जोर दिया? श्रील प्रभुपाद ने इस पेज नंबर 21 नेक्टर डिवोशन में बतलाया, कौन सा साधन है सबसे शक्तिशाली है, पावरफुल है? यस, कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वेरी गुड। टू टाइप्स ऑफ साधन भक्ति, दो प्रकार की साधन भक्ति है, कौन कौन से हैं? अगर हम ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं तो कौन से साधना को अपनाना पड़ेगा? रागानुगा साधन भक्ति। रागानुगा साधन भक्ति का मतलब क्या है? इंग्लिश में नहीं, उसका अर्थ पूछ रहे हैं। यस, who is the devotee? Nitya Siddh, where? From Vaikuntha or Vrindavan? No, chorus. Yes, Sarvapriya. किसके अनुगत होना है? किसके अनुगत होना है? रागात्मिका भक्त के भक्त आश्रित होना पड़ेगा। रागात्मिका भक्त के अनुगत होकर जो साधना की जाती है उसको कौन सी साधना कहते हैं? रागानुगा साधन भक्ति, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए कोई। नहीं, एग्जाम्पल षट गोस्वामी नहीं। षट गोस्वामी क्या मतलब? व्हाट यू मीन षट गोस्वामी? नो, हाउ? यस, सुबल सखा। सो हाउ यू आर रिलेटेड टू सुबल सखा? सुबल सखा आपने उदाहरण दिया है, क्यों दिया उदाहरण आपने सुबल सखा का? कौन बताएगा? और कोई उदाहरण? सुबल सखा कौन है? सखा वो तो मैंने बोल दिया सुबल सखा, लेकिन कौन है? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है रागात्मिका भक्त है, उनकी सेवा से आप आकर्षित होते हैं, उनके बारे में जब सुनते हैं तो आपके हृदय में भी लालसा जागृत होती है, उनकी तरह सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। आप भी चाहते हैं कि आप सुबल सखा की तरह कृष्ण की सेवा करें सख्य रस में, तो आप उनके अनुगत्य हो जाते हैं और ऐसे में आप भजन करते हैं, साधना करते हैं। ऐसी साधना को क्या कहा जाता है? ऐसी साधना को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब प्रश्न आपसे एक और पूछते हैं। ललिता सखी, विशाखा सखी, ये रागात्मिका भक्त हैं, ठीक है कि गलत है? ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछते हैं। स्वरूप दामोदर रामानंद राय महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, वो रागात्मिका भक्त हैं या नहीं है? उनको रूपानुग कहा जाएगा या नहीं? हाथ खड़ा करके बोलिए। क्यों? तो उससे क्या? हाँ, ललिता सखी के अनुगत है, उनकी सेवा में है श्री रूप मंजरी। तो स्वरूप दामोदर रूपानुग नहीं है, रूप गोस्वामी के अनुगत नहीं है, रूप गोस्वामी उनके अनुगत है स्वरूप दामोदर को। नंद बाबा, माता यशोदा, ये रूपानुग हैं? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ जी, रूप गोस्वामी के अनुगत नहीं है, वो रूप मंजरी के अनुगत नहीं है। ब्रज में रूप मंजरी है, रूप मंजरी के अनुगत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? भक्तिनो ठाकुर ब्रज लीला में कमल मंजरी है, वो रागात्मिका भक्त है या नहीं है वो बताएगा। क्या वो रूपानुग है या नहीं है? क्यों है रूपानुग? रूप मंजरी के अनुगत है, रूप मंजरी की तरह वो श्रीमती राधारानी की सेवा करने की इच्छा रखते हैं और कर रहे हैं। होती है रूप मंजरी के जो अनुगत्य है, जो मंजरिया, उनको रूपानुग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जब भक्तिनो ठाकुर भजन में क्या लिख रहे हैं कि राधा कुंड के तट में रहकर मैं श्री रूप मंजरी से प्रार्थना करता हूं कि मैं उनकी तरह श्रीमती राधारानी की सेवा कर सकूं। ठीक है, अब स्पष्ट है? रूपानुग वर आए थे भक्तिनो ठाकुर के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक भक्ति का मतलब क्या है? हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं या रागानुग का भक्ति कर रहे हैं? वैदिक भक्ति का मतलब क्या है? शास्त्रों के अनुसार गुरु के आगे क्या साधन? और कुछ और थोड़ा स्पष्ट? रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, सो व्हाट एल्स? प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रहते हुए विधि विधानों का पालन करना। और हम वैदिक साधन भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। वैदिक भक्ति इज नॉट स्पॉन्टेनियस, सो हाउ देन यू गेट द इंस्पिरेशन? फ्रॉम वेयर यू गेट द इंस्पिरेशन टू परफॉर्म वैदिक भक्ति? फूल नहीं ऐसा। हाँ, गुरु, साधु और शास्त्र से हमें इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है वैदिक भक्ति करने की। सो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ओके, सो द परीक्षित महाराज जब सबसे पहले उनको जो शाप मिल गया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वो सुखदेव गोस्वामी के पास गए और उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? हाँ, जो मरणासन्न व्यक्ति हैं, जो मरने वाले व्यक्ति हैं, उनको क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किन नामों का जप करना चाहिए, किसकी पूजा सेवा करनी चाहिए। तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था बताया गया है? परीक्षित महाराज की जो अवस्था है, जिस अवस्था में इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न पूछा, वैदी तो है, बात सही है, वैदी भक्ति है, लेकिन इस अवस्था को प्राकृत अवस्था भी कहा गया है। यहां पर प्रश्न कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का नहीं था, मृत्यु का भय। तो वैदिक भक्ति का आपने जैसे बताया कि सार है कृष्ण काम स्मरण कर पाए। हम नियमों का पालन करते इसलिए हैं, सुबह उठते इसलिए हैं, हरिनाम इसलिए जप करते हैं, विधि विधानों का पालन इसलिए करते हैं ताकि हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। ये इसका लक्ष्य है। अब हम अगले अध्याय में चलते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। हाँ जी, आज वही हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में, तो उसमें आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये तो सिर्फ हमने परीक्षित महाराज का उदाहरण से लिया, क्योंकि परीक्षित महाराज के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रारंभ में जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया सुखदेव गोस्वामी को, वो रागमार्ग की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो वैदिक भक्ति की कैटेगरी में आ रहा है। उनके अंदर भय था कि मृत्यु जिनकी होने वाली है उनको क्या करना चाहिए, तो उनको प्रेरणा मिली सुखदेव गोस्वामी से, शास्त्र से, श्रीमद् भागवतम से। तो इसलिए हमने उदाहरण दिया, आज हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हाँ, वैदिक भक्ति ठीक है, वैदिक साधन भक्ति जो है, साधन शुद्ध भक्ति, वैदिक भक्ति में वैदिक साधन भक्ति जब हम करते हैं उसमें शुद्ध भक्ति की अवस्था में हम पहुंचते हैं निष्ठा के स्तर पर। साधन करते करते हम लोग जब निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं तब हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, ठीक है। यहां पे बता रहे हैं इस अध्याय में, अध्याय तीन में, कि भूमिका में भक्ति रसाम सिंधु के भूमिका में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में शुद्ध भक्ति के छह लक्षण का वर्णन किया गया था, और दूसरे अध्याय में इसका अभ्यास कैसे किया जाता है इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किया, और तीसरे अध्याय में जो मूल योग्यता है इस भक्ति का अभ्यास करने के लिए उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करने वाले। तो यहां बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो अयुत की है, बिना किसी कारण की है, कोई हेतु नहीं है। डिवोशनल सर्विस इज कॉस्टलेस, और इसलिए मैंने बताया कि योग्यता केवल इतनी है कि हमें आकर्षण होना चाहिए। जितने अधिक हमने भक्ति की होगी पिछले जन्म में उतना अधिक हमारा आकर्षण होगा इस जन्म में, और वही योग्यता है आगे साधन भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वन मे अटेन अ लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्शन टू कृष्णा बट सेम टाइम मे रिमेन वेरी अटैच्ड टू द फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड मटीरियल सेंस एंजॉयमेंट। सच अ पर्सन इफ ही हैज अनफ्लिंचिंग अट्रैक्शन टू कृष्णा बिकम्स एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। तो आकर्षण होता है थोड़ा बहुत, लेकिन साथ में सकाम कर्म में या फिर इंद्र तृप्ति में, इंद्रिय के तर्पण में अभी भी थोड़ा बहुत आकर्षण है, तो उसमें कोई अयोग्यता प्रकट नहीं होती है, ऐसा भक्ति भक्ति कर सकता है। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कोई किसी का विशेष सौभाग्य होता है वही मुझसे आकर्षित हो पाता है, अगर पूर्ण तरह से भी वो कर्म फल से अनासक्त नहीं हुआ है तब भी ऐसी सेवा अगर वो करता है, उस आधार पर भी अगर सेवा करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भौतिक आकर्षण है इसका अर्थ ये नहीं कि हम अयोग्य हैं, फिर भी हम योग्य हैं। भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, थोड़ा भी अगर आकर्षण है आपका तो भक्ति प्रारंभ की जा सकती है। ये यहां पर श्रील गोस्वामी कहकर हम सबको उत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल शुद्ध भक्त की कृपा से ये संभव होता है कि हम लोग साधन भक्ति में लगते हैं, साधना कर पाते हैं। यहां बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पेज नंबर 29 एक्ट्रो डिवोशन में कि महात्माओं का जब संग करते हैं, शुद्ध भक्तों का जब संग करते हैं, जो कि शुद्ध भक्ति में शत प्रतिशत लगे हुए हैं, तब जाकर जो है थोड़ा बहुत आकर्षण जागृत हो सकता है श्री कृष्ण के प्रति। शुद्ध भक्तों की अयुत की कृपा से आकर्षण जागृत होता है। आकर्षण नहीं भी है अगर, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सुकृति नहीं थी, मैंने ये सुकृति दी है, तो प्रभुपाद की कृपा से जो हिप्पी अयोग्य थे उनको भी योग्य बना दिया। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, है ना, बोलते ना। तो इसी तरह से यहां बताया गया, और यहां बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, यानी कि भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है। और अधिक वैराग्य अगर हम प्रकट करते हैं तो हो सकता है वो भक्ति के लिए बाधा भी बन सकता है ना। जैसे एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपना मकान बेचा और अपना धन जो है वो सबको दे दिया और वृंदावन में जाकर वो भजन करने लगा। तो ये क्या सही है, सही है गलत है, क्या करना चाहिए था उसको? वो धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था। उसे क्या किया, वो धन जो है अपने घर परिवार वालों को दे दिया और खुद चला गया वृंदावन में भजन करने के लिए। इससे तो अच्छा ये होता है कि अपने धन का उपयोग वो भगवान की सेवा में लगाता। तो ऐसा वैराग भी जो है वो लाभकारी नहीं है बल्कि हानिकारक है। ऐसे वैराग को फल्गु वैराग भी कहा गया है। फल्गु वैराग मतलब होता है एक फल्गु नदी है, ऊपर से वो देखने में लगता है कि आप चल सकेंगे उसमें, उसके ऊपर उसका रंग भी गहरा रंग होता है उसका, तो ऐसा देखने में लगता है कि आप उसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन जैसे आप पांव रखेंगे तो बिल्कुल अंदर चले जाएंगे आप। इसलिए फल्गु नदी के ऊपर जो है नाम पड़ा है फल्गु वैराग। ऐसा वैराग का कोई लाभ नहीं है। तो संसार को त्यागने से भक्ति प्राप्त नहीं होती, या ज्ञान अर्जित करने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये भी कोई आवश्यक नहीं। भक्ति जो है वो वैराग और ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं, या फिर अधिक तपस्या भी। अब यहां पर श्री रूप गोस्वामी बड़ा विस्तार से समझाने वाले हैं, तीन जो कैटेगरीज हैं, थ्री ग्रेड्स हैं, तीन ग्रेड्स हैं जो भक्ति कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जब हम चर्चा करेंगे तो आप सबसे प्रार्थना है कि हम ये ना सोचें कि हम किसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं, हम शास्त्र की बात बताएंगे, लेकिन ये ना सोचें कि ये हमारे बारे में बताया जा रहा है। निश्चित रूप से हम किसी इस तीन कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं कि तीन कैटेगरी से परे हैं, अगर इस तीन कैटेगरी से बाहर हैं तो फिर हम लोग वैश्य समाज में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी एक कैटेगरी में अपने आप को डालना होगा, और उसी की परिभाषा, उसी की व्याख्या हम लोग आज करेंगे आपके साथ। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, शास्त्र युक्ते सुनिपूर्ण दृढ़ श्रद्धा यार, उत्तम अधिकारी सही तारे संसार, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सही महाभाग्यवान, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहो भक्त होइबे उत्तम। ये श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है कि प्राकृत भक्त किसको कहा जाता है, या कनिष्ठ भक्त किसको कहा जाता है, मध्यम अधिकारी किसको कहा जाता है, और उत्तम वैष्णव किसको कहा जाता है। अपने आप को परखना बहुत आवश्यक है। श्री भक्तिवत ठाकुर कहते हैं पूरा दिन समाप्त होने पर हमें अपने आप को परखना चाहिए, इतनी सारी सेवाओं को करने के बाद क्या मैं कृष्ण का स्मरण कर पा रहा हूं। जैसे एकादशी का दिन आता है तो श्री भक्तिवत ठाकुर सुझाव देते हैं कि पिछले 15 दिन में हमने जो कुछ किया है उसके द्वारा क्या हम लोग आज एकादशी के दिन कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, क्या हमारे 15 दिन में भक्ति बढ़ी है आगे या घटी है। एकादशी के दिन हमें ये करना चाहिए, मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। पहले 10 दिनों में 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और एकादशी के दिन पूर्ण रूप से मन को लगाना चाहिए। एकादशी का अर्थ ये भी होता है श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। तो ये अपने आप को परखना बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आत्मन्वेषण करना बहुत आवश्यक है। समय समय पर आत्मन्वेषण करने से हम लोग हृदय से अपने आप को समझ पाते हैं कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, हमारे यहाँ जो आने का उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम मार्ग से भटक रहे हैं। इसलिए हम लोग इस ग्रंथ को ले रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु को, कि इस माध्यम से हम लोग जाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग की क्या अवस्था है, कि किस स्टेज में हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कनिष्ठ भक्त इसको कहा जाता है। कनिष्ठ भक्त से शुरू करें, ठीक है। तो कनिष्ठ भक्त किसको कहा जाता है, ये श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक है जो भागवत के 11वें स्कंद में आता है, 2वें अध्याय में आता है, और श्लोक संख्या है 47, 11th canto 2nd chapter 47th verse। बड़े ध्यान सुनेगा ये श्लोक। अर्चायाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धा यह ते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। यहां पर ये जो श्लोक बोला जा रहा है, हवि योगेंद्र जानते हैं आप किसके पुत्र थे, भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, है ना, और उसमें भरत महाराज भी थे, तो 9 योगेंद्र कहलाए जाते हैं, 9 योगेंद्र। तो उसमें से ये हवि योगेंद्र हैं जो महाराज निमि को उपदेश दे रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, प्राकृत भक्त का लक्षण बता रहे हैं। A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple but does not behave properly toward other devotees or people in general is called a prakrita bhakta. A materialistic devotee and is considered to be in the lowest position. ये भक्त हैं लेकिन सबसे प्राकृत अवस्था में, निम्न अवस्था में, वो जानते नहीं कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सामान्य जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है। और विग्रह की सेवा में श्रद्धा है, विग्रह में श्रद्धा है, और अन्य भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है जानते नहीं, सामान्य जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है जानते नहीं है। तो ऐसे भक्त को जो है वो बड़ा ही निम्न कोटि का बताया गया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है हमें श्रील भक्तिवत ठाकुर के द्वारा लिखित जैव धर्म से, जिसमें बहुत विस्तार से बताया है प्राकृत भक्त के लक्षण क्या क्या है। ये ऐसा एक ग्रंथ है जैव धर्म जिससे पूर्ण गौड़िया वैष्णव सिद्धांत हमें प्राप्त हो जाता है एक ही जगह में। अगर ये ग्रंथ हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो पूरा गौड़िया वैष्णव दर्शन जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य चरितामृत जितने भी गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उस सब का निचोड़ इस जैव धर्म में प्राप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस वैष्णव समाज में। तो इस ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से श्रील भक्तिवत ठाकुर समझा रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि इसको समझाने का इसी श्लोक पर आधारित। अर्चायाम एव हरे कनिष्ठ वैष्णव प्राकृत भक्त के लक्षण बता रहे हैं।
They have a shadow-like semblance of bhakti called chaya bhakti abhas. वो जो नाम लेते हैं वो कौन सा आभास है? छाया आभास. छाया आभास मतलब सूरज को जैसे बादल ढक लेता है, इसी तरह से अनर्थों के द्वारा और अज्ञानता के द्वारा हमारी चेतना ढकी होती है, और उस चेतना के आधार पर जो नाम लिया जाता है ऐसे नाम को छाया नाम आभास कहा जाता है, जो कि शुद्ध नाम नहीं है. सूरज ढका होता है ना बादलों से तो कैसा लगता है, वैसे ही हमारा शुद्ध नाम ढक जाता है. प्राकृत अवस्था में शुद्ध नाम ले ही नहीं सकते. दे कैन नॉट एसर्टेन हु इज अ डिवोटी और नॉट. वो नहीं जानते हैं कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है. साधु संघ की महत्वता को नहीं समझते. वैश्य कौन है वो जानते नहीं है, ना उनके हृदय में भक्तों के साथ संग करने की कोई इच्छा होती है, साधु संग करने की कोई इच्छा नहीं होती है, और वो पहचान नहीं पाते कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है. उनमें सबसे बड़ी केवल योग्यता ये है कि वो श्रद्धा रखते हैं शिव विग्रह के प्रति, बस वो उनकी योग्यता है. लेकिन ये बहुत बड़ी योग्यता है जो मायावादियों में भी नहीं पाई जाती. मायावादियां तो शिव विग्रह को बहुत ही मानते हैं, भौतिक वस्तु का मानते हैं, संगमरमर का मानते हैं, लकड़ी का मानते हैं. लेकिन कम से कम जो प्राकृत भक्त हैं वो स्वीकार करते हैं कि ये जो शिव विग्रह है वो श्री कृष्ण से अभिन्न है, जिनके दिव्य गुण हैं, इनके दिव्य कार्यकलाप हैं. इतना कम से कम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये प्राकृत भक्त स्वीकार करते हैं. इस कारण से इनको वैश्य समाज में प्रवेश मिल जाता है. मायावादियों को वैश्य समाज में प्रवेश नहीं मिलता, इसी कारण से, क्योंकि वो शिव विग्रह को भी माया मानते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है. मायावादी, मायावादी कृष्ण और अपराधी. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी ये कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे हैं. कृष्ण को कैसा लगता है जब मायावादी कहीं गलती से गुणगान करें कृष्ण का, तो कृष्ण को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर वज्र का प्रहार हो रहा है, वज्र से प्रहार हो रहा है. तो कृष्ण खुश नहीं होते हैं मायावादियों के गुणगान से या उनकी कथा से. और प्राकृत भक्तों की जो श्रद्धा है बड़ी कोमल होती है, कली के समान. उनको वो बहुत जल्दी कंफ्यूज कर सकते हैं. कोमल श्रद्धा लेकर कई बार भक्त आते हैं शुरू शुरू में, है ना, बेचारे वो अच्छे खासे नाचते हुए नजर आते हैं. लेकिन अगर उनको असत्संग मिल जाए, गलत लोगों का संग मिल जाए, तो बड़ी जल्दी उनको कंफ्यूज किया जा सकता है. जिनका शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों के प्रति कोई रुचि रुझान नहीं है, साधु संग करना की इच्छा नहीं है, उनको बहुत आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है. और ऐसे लोग ही अधिक सेवा करते दिखाई पड़ते भी हैं तो वो भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, भक्ति मार्ग से हट जाते हैं, क्योंकि उनकी सेवा का आधार साधु और शास्त्र नहीं है. इसलिए उनकी सारी सेवाएं क्या हो जाती हैं, मैकेनिकल हो जाती है. उनको ऐसा लगने लगता है कि हम फिर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनको केवल दोष नजर आता है, वो दोष दर्शन करते हैं. वैश्य दर्शन को ना पढ़कर ना अध्ययन करके वो दोष दर्शन का अध्ययन करते हैं, छिद्रान्वेषण. और किसी प्रकार का वो तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं. टू ऑपोजिंग ओपिनियंस दे कैन नॉट ऑफर आर्ग्यूमेंट्स. शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव साक्षात्कार नहीं है, इस कारण से वो लोग ऐसे कनिष्ठ भक्त जो हैं वो तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं. बड़ी आसानी से उनको उलझन में डाला जा सकता है. तो बहुत खतरनाक स्थिति है कनिष्ठ अवस्था, प्राकृत अवस्था, ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है. श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, वन मस्ट करेक्ट द मेंटेलिटी ऑफ बीइंग अ नियोफाइट. ज्यादा समय स्टेज में नहीं रहना चाहिए, खतरे वाला स्टेज है ये. जैसे किसी को हॉस्पिटल में डाला जाता है, आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में डाला जाता है, तो वहां पर स्पेशल केयर लिया जाता है ना उनका, खतरे का सिग्नल है वहां. तो ज्यादा समय वहां पर रहेंगे, जो ज्यादा समय रह रहा है वहां पर, इसका मतलब क्या है कि खतरा ज्यादा है. वहां से जल्द निकलना है बाहर, ठीक हो गए. दे डू नॉट अटर शुद्ध नाम, देर चैंटिंग इज नोन एज छाया नामाभास. द छाया नामाभास रिफर्स टू अ सेमब्लेंस ऑफ द प्योर नेम ऑब्स्कर्ड बाय इग्नोरेंस एंड अनर्थास लाइक द सन कवर्ड बाय क्लाउड्स विच डज नॉट मैनिफेस्ट इट्स फुल ब्रिलियंस. हमने जैसे बताया पहले है ना, नाम ये जो है जिस तरह से सूर्य आच्छादित हो जाता है, बादलों से ढक जाता है, अनर्थों के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा, तमोगुण के द्वारा आच्छादित हो जाता है नाम, तो नाम का शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर पाता है कनिष्ठ भक्त. कनिष्ठ भक्त की केवल योग्यता बताए कि विग्रह में उसकी श्रद्धा होती है. और प्राकृत भक्त जो है मायावादियों का जो अपराध है, या मायावादी अगर कुछ कहते हैं तो उससे उनको कोई खास वो उसका विरोध नहीं कर पाते, उनको गिल्टी फील नहीं होता है. मायावादी अगर कुछ बोल भी रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो जो प्राकृत भक्त हैं वो बस हाँ ठीक है बोले तो क्या फर्क पड़ता है. नियोफाइट्स आर नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द मायावाद एंड दैट इज वाई दे आर एक्सेप्टेड एज प्राकृत वैष्णव. उनको लगता है कि कोई बात नहीं बोलने दो क्या फर्क पड़ता है, हम चलते हैं. नियोफाइट्स आर नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द मायावाद. मायावादी जो अपराध कर रहे हैं उसको सोचकर उनके हृदय में कोई ग्लानी सी नहीं होती, उनको लगता नहीं कि कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसा सोचते तक नहीं है वो. नो Neophytes are not the guilty of the offense of Mayavad, and that is why they are accepted as Prakrit Vaishnav. Yeah, they are not treated as Mayavadis. At the same time, they can't refute the Mayavadis. Both things are there. They cannot refute the Mayavadis, क्योंकि उनके पास शास्त्र का कोई आधार नहीं. इसलिए वो उनको philosophically challenge भी नहीं कर सकते हैं, है ना? और इस कारण से उनको प्राकृत वैष्णव कहा जाता है. बिकॉज दे हैव दिस फन क्वालिटी ऑफ फेथ इन डीटी एंड चैंटिंग ऑफ हरिना विल क्विकली राइज फ्रॉम छायावास टू शुद्ध नाम. क्योंकि उनकी श्रद्धा शिव विग्रह में है, शिव विग्रह में है, उस मानते हैं कि शिव विग्रह चिन्ह में है, अप्राकृत है, कृष्ण से अभिन्न है, उनके दिव्य गुण है, उनकी लीलाएं दिव्य है, इतना अगर वो मानते भी हैं तो जल्दी वो क्या होगा, समय आने पर वो शुद्ध नाम का उच्चारण कर पाएंगे. लेकिन मायावादियों की कोई आशा नहीं है, इसलिए मायावादियों को प्रवेश मिलता नहीं वैष्णव समाज में. सपोज अ कनिष्ठ भक्त वर्शिप द डीटी बट इज नॉट फ्री फ्रॉम कर्म ज्ञान. मान लो कि विग्रह की सेवा में लगा है लेकिन कर्म और ज्ञान के मिश्रण से अभी वो मुक्त नहीं हुआ है. कर्म का मतलब भौतिक इच्छाएं उसके अंदर है, भौतिक सुख भोगने की इच्छा है, या ज्ञान मिश्रित भक्ति वो कर रहा है. दुखी होकर आया है वैष्णव समाज में, संसार से दुखी होकर आया है भय के कारण, या संसार को दुखाले मानते हुए वो आया है. जिस तरह से गजेंद्र बहुत दुखी थे, कष्ट में थे, वो प्राकृत अवस्था है. इतना उनको कष्ट हो रहा था, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया, अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, उन्होंने भगवान को पुकारा, है ना. और ऐसे में क्या होता है, कुछ अतिथि आ जाते हैं जो कि भक्त हैं, और इनके प्रकार है उनकी वो सेवा करता है, उनका स्वागत करता है, और उनसे वो हरि कथा सुनने का उसको अवसर प्राप्त होता है शास्त्र के आधार पर. तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी श्रद्धा बढ़ती है भक्तों में, और ऐसे में वो अपनी गलतियों को समझता है, अपनी गलतियों को परख पाता है, और धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ता है. और ही बिगिंस टू फॉलो द बिहेवियर ऑफ द साधुस एंड टू रेक्टिफाई हिज ओन बिहेवियर. ग्रेजुअली द डिफेक्ट ऑफ कर्म एंड ज्ञान फेड एंड स्टडी शास्त्र बाय रेगुलरली हियरिंग कृष्णास पास्ट टाइम्स. तो होता क्या है कि वो जो ज्ञान और जो कर्म का मिश्रण है वो धीरे धीरे उसके मन से निकल जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भगवान की लीलाओं का वो श्रवण करता है और भक्ति में अग्रसर होता है. ही एक्सेप्ट द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ श्री हरि श्री नाम एंड यंगस ऑफ भक्ति सच एज हियरिंग एंड चैंटिंग. व्हेन द संबंध ज्ञान इज एस्टैब्लिश ही अटेन्स अ मध्यम स्टेज. संबंध ज्ञान स्थापित हो जाता है तो वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाता है। संबंध ज्ञान का मतलब है वो समझ जाता है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इस बात को एहसास करने लगता है भक्तों की कृपा से, भक्तों का संग करके, भक्तों के सानिध्य में। एट स्टेज ही परसीज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोटीज एंड ट्रीट्स देम एज गुरु, भक्तों का महत्व समझता है फिर उनको अपने गुरु तुल्य मानता है। लेकिन इफ ही एसोसिएट्स इक्वली विद डिवोटीज, भक्तों का भी संग कर रहा है लेकिन साथ में मान लीजिए भक्तों का भी संग करता है और साथ में जो द्वेष करते हैं भगवान से उनका भी संग करता है तो फिर वो कनिष्ठ अवस्था में रहेगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा, उसको एक मार्ग पकड़ना पड़ेगा। कि कनिष्ठ भक्त है कोई दिक्कत नहीं, अगर वो शुद्ध भक्तों का संग करने लग गया है और जो द्वेष करते हैं उनका संग नहीं करता है तो कनिष्ठ अवस्था से वो जल्द ही मध्यम अवस्था में आने लगेगा। लेकिन वो अगर साथ में उन लोगों का भी संग कर रहा है, उनसे भी मिलता है, उनसे भी सुनता है जो द्वेष करते हैं, इनिमिकल हैं कृष्ण के, इनिमिकल हैं या द्वेष करते हैं कृष्ण से, उनका भी साथ साथ संग करता है तो वो कनिष्ठ अवस्था में रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ही रिमेन्स ऑन द सेम लेवल। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो हरिनाम का जब जो है कभी कभी करते हैं, सदा नहीं कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी हमेशा करते हैं, जो हमेशा करते हैं वो मध्यम अधिकारी है, जो कभी कभी करते हैं वो कनिष्ठ भक्त हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से ही हरिनाम लेने का मन करता है, कृष्ण का स्मरण करने का, कृष्ण का स्मरण होता है, वो है उत्तम वैष्णव। समझ गया आप, जो कभी कभी जप करते हैं वो प्राकृत अवस्था है, संख्या समाप्त होते ही बीट बैग को एक तरफ रख देते हैं बोझ समझकर, छुटकारा मिला में। और मध्यम अधिकारी भक्त जो है खाने और छोड़ने सोने के अलावा जब भी समय मिलता है, श्रील भक्तों ठाकुर कहते हैं हमेशा नाम लेने का क्या मतलब है, उनका जो दिनचर्या है, जो उनके बेसिक एक्टिविटीज हैं जैसे कि नहाना, शौच क्रिया करना, विश्राम करना, या जैसे व्यवसाय में भी जाते हैं कई बार, हाँ, या बिजनेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, उस सब के बाद जितना भी उसको समय मिलता है वो हमेशा उसका हाथ जो है माला में जाता है, वो नाम लेना शुरू करता है, हरि नाम के प्रति इतना आकर्षण रहता है उसको, इसलिए वो हमेशा नाम लेता रहता है। और उत्तम वैष्णव कौन है, जिनके दर्शन करने मात्र से हमें कृष्ण का स्मरण होता है, वो उत्तम वैष्णव। दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के अलग अलग यहां पर जो श्लोक के आधार पर मध्यम अधिकारी के बारे में आगे क्या बता रहे हैं, देखिए मध्यम अधिकारी के बारे में भागवत के 11 स्कंद में दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में हवि योगेंद्र महाराज निमी को कह रहे हैं, ईश्वरे तद अधिनेशु बालिशेषु दुष्ट च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। एन इंटरमीडिएट और सेकेंड क्लास डिवोटी कॉल मध्यम अधिकारी offers his love to the supreme personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows mercy to ignorant people who are innocent and disregards those who are envious of the supreme personality of Godhead. To madhyam adhikari ke bare mein yahan par bataye hain qualifications. First characteristic kya bataya hai yahan par madhyam adhikari ka, ki uska jo hai prem rata hai krishna ke prati, naam ke prati ruchi hoti hai, name ruchi jiva daya vaishnava seva, है ना, महाप्रभु ने बोला ना सनातन गोस्वामी को, तो नाम के प्रति आकर्षण यानी कि कृष्ण के प्रति वो प्रेम अपना अर्पित करता है, और ज्ञान और कर्म के मिश्रण से वो रहित होता है। इसलिए जो श्लोक है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, वो उत्तमा भक्ति कर रहा है, उत्तम वैष्णव नहीं बना लेकिन उसकी जो भक्ति है उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं, वो शुद्ध भक्ति कर रहा है क्योंकि हैज बिकम फ्री फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कर्म एंड ज्ञान। वो भौतिक फलों के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए और संसार से छुटकारा पाने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, दुखी होकर वो भक्ति नहीं कर रहा है, संसार से दुखी होकर वो भक्ति नहीं कर रहा है। ध्रुव महाराज धन के लिए, राज्य के लिए अपने राज्य को त्याग कर गए कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा उनको राज्य प्राप्त हो जाए, इसलिए वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने गए कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य प्राप्त हो जाए। तो ये प्राकृत अवस्था है कि वो धन के लिए। लेकिन जो मध्यमधिकारी जो भक्त है वो इस प्रकार की ज्ञान और कर्म के मिश्रण से रहित हो जाता है, अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाता है और कृष्ण प्रेम के लिए जो भी को अनुकूल है, अनुकूल क्या क्या है, कृष्ण प्रेम के लिए भक्तों से मित्रता बनाना और जो निर्दोष है उनके प्रति दया दिखाना और जो द्वेष करते हैं उनका परित्याग करना। वी आर इंस्ट्रक्टेड टू सर्व द वैष्णव्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ एडवांसमेंट। आप सुन रहे हैं कि हम लोग वैष्णव की सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं उनकी उन्नति के आधार पर। जिस तरह से श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आद्रियत। मनसा आद्रियत का मतलब है कि मन से आदर देना चाहिए जो कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहा है, जो केवल नामों का उच्चारण कर रहा है उसका आदर करना चाहिए मन से। तो यहां बता रहे हैं कि सबको एक तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो मध्यमाधिकारी जानता है किसको किस तरह से ट्रीट करना है, मध्यमाधिकारी जानता है किस वैष्णव को कितना सम्मान और कितनी सेवा देनी चाहिए। और कनिष्ठ भक्त तो जानता नहीं कि कौन वैष्णव है, मध्यमाधिकारी जानता है। तो ये इस प्रकार मैत्री का मतलब है, जो मैत्री शब्द आया इसमें श्लोक में, मैत्री का मतलब है एसोसिएशन लेना, संग करना, कन्वर्सेशन उनके साथ संवाद करना और उनकी सेवा करना। जैसे ही शुद्ध वैष्णव का दर्शन होता है उसका स्वागत करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, उसके साथ संवाद, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए और जहां तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति की जा सके, जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे वैष्णव की ना निंदा करनी चाहिए ना अनादर करना चाहिए। और अगर उनका शरीर कुरूप भी हो, अगर देखने में वो आकर्षक भी ना हो, तब भी उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से श्रील रूप गोस्वामी आगे बता रहे हैं, ना प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वैष्णव का जो शरीर है उसको प्राकृत नहीं मानना चाहिए, वैष्णव का शरीर अप्राकृत है। उदाहरण देते हैं गंगा जी का कि गंगा जी जो है वो बरसात के समय में उसमें फोम आ जाता है, फेन आ जाता है और फेन आने से क्या होता है, देखने में बड़ा गंदा लगता है, लोग गंगा जी में प्रवेश करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि ये देखो गंदा है पानी। तो गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं। इस तरह से वैष्णव का शरीर कभी अपवित्र होता नहीं है, वैष्णव का शरीर हमेशा चिन्मय है, वैष्णव का शरीर और उनकी आत्मा दोनों ही चिन्मय है। इसलिए हरि भक्ति विलास में क्या दिया, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुसु नरमति। गुरुसु नरमति मतलब गुरु के साधारण व्यक्ति समझना, या जो शिला है या मतलब अर्चे विग्रह है उसको पत्थर समझ लेना एक। इस प्रकार वैष्णवेर जाति बुद्धि, और जाति बुद्धि रखना कि ये अमेरिकन वैष्णव है, ये यूरोपियन वैष्णव है, ये बिहारी वैष्णव है, ये पंजाबी वैष्णव है, इस प्रकार की जाति बुद्धि रखना और जात के आधार पर भेद करने से वैष्णव अपराध होता है। हाँ। यह नरक की सह, ऐसी बुद्धि रखने वाला जो है वो नरक गामी होता है, हरिभक्ति लास बता रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भी वर्गीकरण कर दिया इसमें उपदेशामृत में, उन्होंने बताया कि प्राकृत भक्त कौन है। हाँ। प्राकृत भक्त की परिभाषा दे दी, कम से कम जो नाम ले रहा है उसका मन से आदर करो, आध्यात्मिक जिससे दीक्षा ले ली है और विग्रह की सेवा में कर रहा है उसको दंडवत प्रणाम करो। रूप गोस्वामी बता रहे हैं किसको कैसे कितना आदर देना है। और उसके बाद क्या बोला, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सिता संगम लब्ध्या। जिसका हृदय अन्यों की निंदा से रहित है और शुद्ध भक्तों की सेवा में तत्पर है, गुरु की सेवा में तत्पर है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। उन्होंने पहले नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि सबका संग करो, सबका संग करेंगे तो रंग बदल जाएगा, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में अगर साधु संघ का लाभ उठाना है तो कैसे वैष्णव का संग करना है, शुश्रूषया भजन विज्ञान। तो यहां पर इस बात पे जोर दिया कि इसी को कहते हैं मैत्री, एज वन सी अप्योर वैष्णव, ये तो बता दिया। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मध्यम अधिकारी वैष्णव इज दैट ही बेस्टोज मर्सी ऑन द इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब है, यहां पर बताया है बालिशेषु, बालिशेषु मतलब जो कनिष्ठ को भी बोला गया है और जो निर्दोष है उनको भी बालिशेषु बोलते हैं। बालिशेषु मतलब बालिशेषु, ये शब्द आया है बाल, जो बालक, जो बच्चा है आध्यात्मिक जीवन में बच्चा है, या बच्चा जो निर्दोष होता है उसको बाल, उनको भी बालक कहा जाता है, बालिशेषु। ऐसे जो लोग हैं इनके ऊपर वो क्या करता है, दया दिखाता है। बालिश रिफर्स टू दोज हू आर इग्नोरेंट ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रूथ, जो परम सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, उसके बारे में अज्ञानता होती है। इट मींस मेटेरियलिस्टिक पीपल नॉट रिसीव्ड एनी जेन्युइन गाइडेंस इन स्पिरिचुअल मैटर्स बट हैव नॉट बीन कंटेमिनेटेड बाय अनऑथराइज्ड डॉक्ट्राइन सच एज मायावाद। आप समझ रहे हैं, यानी कि वो भौतिकवादी लोग या भौतिकता में जो लिप्त लोग हैं जिनको आध्यात्मिक विषय में किसी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी मायावाद दर्शन से दूषित नहीं हुए हैं, मायावाद दर्शन से दूषित नहीं हुए, भौतिक इच्छा है उनके कारण। दे आर नॉट एनवियस ऑफ डिवोटीज, भक्तों से वह द्वेष नहीं करते, भक्ति से वह द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या एक मंडेन मेटीरियल इगोइज्म रहता है सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, हाँ, और अधिक धन होने के कारण, तो इन कारण से जो है एक मंडन इगोइज्म रहता है, उस कारण से वो भक्तों का संग करने में हिचकिचाते हैं। एन अटैचमेंट प्रिवेंट्स देम, अटैचमेंट टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, तो इस प्रकार वो श्रद्धा नहीं जागृत कर पाते हैं श्री कृष्ण के प्रति। और भी ऐसे विद्वान दार्शनिक सो कॉल्ड लर्नड फिलोसफर्स और स्कॉलर्स और साइंटिस्ट वो भी इस कारण से नहीं आ पाते, लेकिन ये सब निर्दोष है, दे आर इनोसेंट, तो उनके प्रति दया दिखाना यह आवश्यक है। तो दया कौन दिखाएगा, जो मध्यम अधिकारी भक्त है, जो मध्यम अधिकारी भक्त है। और कनिष्ठ भक्त को भी बालिश बोला गया है जब तक वो शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं आ जाता, शुद्ध भक्ति के धरातल पर जब तक नहीं आ जाता है तब तक कनिष्ठ भक्त को भी बालिश बोला गया है। व्हेन ही बिकम्स acquainted with the truth of sambandh gyan and awakens ruchi for shuddh hari naam by the mercy of pure devotees, his ignorance will be dissipated and he will attain the status of madhyam vaishnav, madhyam adhikari। matlab sambandh gyan jab jagrit ho jayega aur shuddh naam ka wo charan karne lagega aise shuddh bhakton ke sanidhya mein, kehne ka tatpary ye hai ki madhyam adhikari ko chahiye ki wo prakrit bhakton ke upar daya dikhaye, unko apna sanidhya, unka sang de apna, ये इसका कहने का तात्पर्य है। प्रश्न ये उठ सकता है, कनिष्ठ भक्त तो जानता ही नहीं कि भक्त कौन है, तो वह कैसे संग लेगा, उसको तो पता ही नहीं कौन साधु है, वो जानता ही नहीं कि कौन वैष्णव है, तो वो कैसे साधु संग करेगा। लेकिन मध्यम अधिकारी के लिए जक्षण है ये शास्त्रों का, और उसकी ये योग्यता है कि वो प्राकृत भक्तों का अपना प्राकृत भक्तों को अपना संग दे। अगर वो नहीं संग दे रहा है तो वो भी खुद प्राकृत है, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। फिर निर्दोष लोगों को संग देना जो है उसकी एक जिम्मेदारी है, उसकी एक योग्यता है, इसलिए वो मध्यम वैष्णव है। हिज फेथ इज स्ट्रांग कन्विंस्ड हिज नॉलेज इज गुड, दैट मीन्स शास्त्र का जो ज्ञान है वो अच्छा होता है और श्रद्धा उसकी सुदृढ़ होती है, कन्विंस होता है शास्त्रों में, लेकिन हमेशा वो शास्त्रों के आधार पर कन्विंस नहीं कर पाता लोगों, कभी कर पाता है कभी नहीं कर पाता है, बिकॉज ही इज नॉट फुली सेल्फ रियलाइज्ड। तो इस कारण से कभी कर पाता है कभी नहीं कर पाता है। और आगे क्या बताया, देखिए, मर्सी मीन्स वन शुड एक्सरसाइज, वन शुड एक्सक्यूज द इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ द इग्नोरेंट, यानी कि जो निर्दोष लोग हैं, अज्ञानी जो हैं, अगर उनका व्यवहार ठीक भी नहीं है, उनके अंदर कर्म का मिश्रण हो सकता है, उनके अंदर ज्ञान का मिश्रण हो सकता है, उनकी श्रद्धा हो सकती है योग में हो, तपस्या में हो, या फिर वो बिगड़े की सेवा कर रहे हो किसी भौतिक लाभ के लिए और भक्तों से दूर रहते हो, वर्णाश्रम धर्म के प्रति उनकी आसक्ति है, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमें कृपा दिखानी है, यानी कि इनको मध्यम अधिकारी भक्तों को कैसे अच्छा संग देकर, दया दिखाकर और सही उपदेश देकर, उनको मार्गदर्शन देकर कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी जो है वो मध्यम अधिकारी मध्यम वैष्णव बन सकता है। मध्यम अधिकारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज नेग्लेक्ट टुवर्ड्स दोस हु आर इनिमिकल, यानी कि जो द्वेष करते हैं उनका परित्याग करना है, उनके ऊपर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पांच तरह के लोग हैं जो द्वेष करते हैं, द्वेष करने वाले पांच प्रकार के हैं, कौन कौन से सुनिए। देयर फाइव टाइप्स ऑफ एनवी। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड, श्रद्धा नहीं है भगवान। सेकेंड, बिलीफ दैट द लॉर्ड इज नथिंग मोर देन द नेचुरल पोटेंसी दैट ब्रिंग्स अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्शन, मतलब एक शक्ति मान लिया बस, है ना, एक शक्ति मान लिया, कोई शक्ति है जिसके द्वारा हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। थर्ड क्या बिलीफ है, दैट द लॉर्ड हैज नो फॉर्म, उनका कोई रूप नहीं है। और फोर्थ क्या है, द जीवास आर नॉट इटर्नली सबॉर्डिनेट, जीव जो है हमेशा के लिए वो आश्रित नहीं है, समय आएगा जब जीव और पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाएगा, हम एक हो जाएंगे, ये कुछ समय के लिए भेद है, इस प्रकार की धारणा रखते हैं वो क्या कर रहे हैं, द्वेष रखते हैं अपने अंदर, द्वेष। जीवास आर नॉट इटर्नली सबॉर्डिनेट टू द सुप्रीम लॉर्ड। एब्सेंस ऑफ मर्सी, फिफ्थ वन क्या है, एब्सेंस ऑफ मर्सी, मतलब यह कि जिनके हृदय में द्वेष है उनके हृदय में दया नहीं है, और जिनके हृदय में दया होती है, कंपैशन होता है, उनके हृदय में द्वेष नहीं होता, यानी कि द्वेष को दूर करने का उपाय है कंपैशन शो करना। कंपैशन नहीं भी है तो प्रयास करो, उसको एक साधना के रूप में अपनाओ। गुरु जो है कि आदेश से प्राकृत भक्त जो है प्रचार करने का प्रयास करता है, हालांकि प्रचार उसका एक सब्जेक्ट मैटर नहीं है, प्राकृत भक्त प्रचार करने के योग्य नहीं होता, लेकिन जब शुद्ध भक्त प्राकृत भक्त को प्रचार करने की आज्ञा देते हैं तो आज्ञा के साथ शक्ति भी देते हैं, तो ऐसे प्राकृत भक्त के लिए ऐसी आज्ञा जो है वो साधना है, वो प्रचारक नहीं बना है, लेकिन उसके लिए वो प्रचार क्या है, साधना है, तपस्या है। ऐसी तपस्या जब वो करता है, प्रचार करता है, साधना करता है, गुरु का आदेश का पालन करता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, धीरे 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 क्रमशः उसके हृदय में स्वाभाविक दया करुणा जागृत होती है, और जिस दिन वो करुणा जागृत हो जाती है वो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के धरातल पर पहुंच जाता है। इस तरह से कनिष्ठ भक्त जो है वो मध्यम अधिकारी बनता है। दिस काइंड ऑफ पीपल आर बिरेफ्ट ऑफ इवन प्राकृत भक्ति, प्योर डिवोटीज शुड अवॉइड मायावादीज। श्री भक्ति ठाकुर ने सुझाव दिया है जैन धर्म में, कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं जो मायावादी हैं, पांच प्रकार के जो द्वेष बताए हमने, पांच प्रकार के लोग जो द्वेष करते हैं जिनमें द्वेष होता है, वो प्राकृत भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट इवन परफॉर्म नियोफाइट डिवोशनल सर्विस, दे आर इवन बिरेफ्ट ऑफ दैट। सो फॉर मध्यम अधिकारीज इट इज रिकमेंडेड, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड अवॉइड द मायावादीज। मायावादी भाष्य सुनी ले होए सर्वनाश, तो मायावादियों के साथ समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, गृहस्था वैष्णव रिमेन इन द सोसाइटी। भक्ति ठाकुर बहुत प्रैक्टिकली समझा रहे हैं इन बातों को कि गृहस्थ वैष्णव जो है ये बाहर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको तो सबके साथ डील करना पड़ता है, मायावादी छायावादी सब प्रकार के वादियों से डील करना पड़ता है, योगियों से, तांत्रिकों से, पता नहीं कैसे कैसे तरह तरह के लोग संसार में, सबसे डीलिंग करनी पड़ती है। तो भक्ति ठाकुर क्या कह रहे हैं, दे मे हैव टू डील विद द पीपल ऑन मटेरियल टर्म्स बट वन शुड नॉट टेक देयर एसोसिएशन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल मैटर। बाकी चीजों में तो ठीक है, क्योंकि आप एक रस होने के कारण आपको व्यवसाय करना है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं समाज में रहने के कारण, तो आप वो सब करें। लेकिन जब आध्यात्मिक बातों की बात आती है तो वहां पर किसी प्रकार का संग ना लें उनका, क्योंकि उसके लिए आप बाउंड नहीं है, उसके लिए आपको सैलरी नहीं मिल रही है। सो देयरफॉर यू कैन रिफ्यूट, यू कैन अवॉइड दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एसोसिएशन, इज नॉट फेवरेबल, प्रतिकूल है, उसका त्याग करना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, ऐसे मायावादियों का संग करना जो है वो प्रतिकूल है और वर्जित है शास्त्रों में। वन मे थिंक दैट वन शुड इंक्लूड इनिमिकल पीपल अमंग द इग्नोरेंट, कोई सोच सकता है कि नहीं ऐसे जो द्वेष करते हैं उनको भी निर्दोष मानकर उनके प्रति भी हमें दया दिखानी चाहिए। बट इफ वन डू डस सो वन विल नॉट हेल्प देम बट विल ओनली हार्म वन सेल्फ। अगर ऐसा आप करेंगे कि वो निर्दोष है बेचारे, हमें उनके ऊपर भी दया दिखानी चाहिए, क्यों वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना, हम उनको अपना संग देंगे, उनसे हम लोग आध्यात्म की चर्चा करेंगे, तो अपना ही हम नुकसान करा रहे हैं। कि जितना वो लोग विरोध करेंगे, जितना मायावाद भाष्य आपको सुनाएंगे, उतना आपके हृदय में वो जहर डाल रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हम श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है जो 10,000 मायावादी सन्यासियों को वैष्णव बना दिए, हम श्रील प्रभुपाद नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमेशा उत्तम वैष्णव रहे, महाभागवत, अभी आगे महाभागवत या उत्तम वैष्णव का वर्णन आएगा। श्रील प्रभुपाद जो है प्रचार के करने हेतु वो मध्यम जो धरातल है उन्होंने उसको स्वीकार किया प्रचार के लिए, लेकिन इसके कारण, इसके द्वारा ये नहीं निष्कर्ष निकलता कि श्रील प्रभुपाद मध्यम अधिकारी बन गए, वो अपने स्तर से गिर गए। श्रील प्रभुपाद फिर भी उत्तम वैष्णव बने रहे, श्रील प्रभुपाद ऐसा कर सकते थे, साधारणतः ऐसा होता नहीं। मध्यम अधिकारी अगर कोई बन रहा तो प्राकृत अवस्था से कोई मध्यम अधिकारी भक्त बनता है, फिर मध्यम अधिकारी से कोई उत्तम वैष्णव पहुंचता है, बनता है। उत्तम वैष्णव महाभागवत बनने के बाद कौन संसार के बारे में सोचता है फिर, वो तो केवल कृष्ण के बारे में हमेशा चिंतन कर रहा है, वो हमेशा कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है, वो संसार के बारे में तो रंच मात्र भी उसको आभास नहीं होगा। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है, इसलिए हम मायावादियों के साथ हम अपना समय बर्बाद न करें। हियरिंग एंड चैंटिंग आर मिक्स विद गुडनेस। प्राकृत अवस्था में क्या होता है कि श्रवण कीर्तन जो है हमारा वो मिश्रित होता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होता है। जैसे कई बार श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक ही पेज में अटके रहते हैं, कई बार एक ही पेज में लगे हुए हैं और मन कहीं और है, एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, पेज वहीं पे है, तो आगे आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हम, है ना, क्योंकि मन भाग रहा है, हमारा मन इतना चंचल है, क्योंकि हमारा मन जो है रजोगुण से प्रभावित है, मन स्थिर नहीं है, इसलिए श्रवण कीर्तन के समय मन जो है उधर है नहीं, रजोगुणी श्रवण कीर्तन हो रहा है। और तमोगुण में तो और भी बुरी अवस्था है, मन भागता ही नहीं है, हम बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, निद्रा योग में प्रवेश कर जाते हैं, निद्रा से जुड़ जाते हैं, निद्रा से जुड़ जाते हैं तमोगुण के कारण। और जो सत्वगुण में है वो एक एक शब्द का बहुत गहराई से अध्ययन करता है और उसकी विवेचना करता है, उसके बारे में चर्चा करता है, उसका मंथन करता है और भक्तों के साथ बैठकर एक दूसरे को बोध कराते हैं। मच्चित मदगत प्राणा बोधे हंता परस्परम, तो सात्विक होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जैसे जो परमहंस हैं वो क्या करते हैं, वो तो प्रत्येक श्लोक का रसास्वादन करते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण करते ही उनका हृदय गदगद हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कथा करते करते वो आगे बोल नहीं पाते हैं, कंठ उनका गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ये होता है उनके साथ। तो जब कोई श्रवण कीर्तन करता है और इस तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, श्रवण कीर्तन करता है और उसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समझ लीजिए कि वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि उसको अभी नाम में रुचि आ गई है, श्रवण कीर्तन में रुचि आ गई है। और मध्यम अधिकारी को संबंध ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है कि वो अनुभव कर चुका है, एहसास कर चुका है कि उसका संबंध क्या है भगवान के साथ, क्या संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, इस बात को अनुभव कर चुका है कि आई एम एक्चुअली इटर्नली अ सर्वेंट नॉट मास्टर, देयरफॉर आई एम सपोज टू सर्व, इसलिए हमेशा वो सेवा करता है, श्री नाम प्रभु की सेवा करता है, हमेशा हरि नाम लेता रहता है, वैष्णवों की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से संबंध ज्ञान उसका जागृत हो जाता है, वैष्णवों से उसका संबंध है क्योंकि, इसलिए उसका भगवान से भी संबंध स्थापित हो जाता है। हमारा भगवान से संबंध है या नहीं है ये कैसे हम लोग जाने, अगर हमारा वैष्णव से संबंध है या नहीं है इसके आधार पर, गुरु से हमारा संबंध नहीं है, वैष्णव से हमारा संबंध नहीं है, हम बोलते हमारा राधा पारसार्थी से संबंध है, ये हो ही नहीं सकता। राधा पारसार्थी से आपका अगर संबंध है तो तदीय वस्तु गुरु और वैष्णव, उनसे भी हमारा संबंध होना चाहिए कि हम उनके भी सेवक हैं, दास दासानुदास, गोपी भरदूर पद कमले और दास दासानुदास। संबंध ज्ञान का मतलब ये कि मैं जान चुका हूं कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है और सृष्टि का मेरा संबंध सृष्टि से और सृष्टि का भगवान से संबंध क्या है और उसमें भेद क्या है, इस सबको अच्छी तरह से समझ चुका हूं, एहसास कर चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं और उस आधार पर मैं सेवा कर रहा हूं। और उसका जो नम्रता है, उसकी सहनशीलता है, वो स्टडी होती है। हिज ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस इज स्टडी। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि कब होता है, जब ये चार क्वालिफिकेशन होते हैं, दैट इज मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी मतलब क्या है कि उसका ह्यूमिलिटी, उसका टॉलरेंस अब स्टडी हो गया है। जितना ह्यूमिलिटी टॉलरेंस ज्यादा होता है उतना हम कृष्ण प्रेम के समीप है और जितना कम है उतनी दूर है। तो टॉलरेंस, टॉलरेट करने से प्योरिटी बढ़ती है। द मोर वी टॉलरेट और मोर और प्योरिटी विल इंक्रीज एंड द मोर ह्यूमिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। टॉलरेंस से नम्रता आती है, टॉलरेंस से प्योरिटी बढ़ती है, टॉलरेंस से हम कृष्ण के और समीप आ जाते हैं और यही सहनशीलता जो है हमें हरि नाम लेने में हमें सहायता करती है। और दूसरा क्या बता रहे हैं कि दूसरों से आदर की वो आकांक्षा नहीं करता है, हमेशा दूसरों को आदर देने का हमेशा इच्छा प्रकट करता है, दूसरों की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है। और सबसे बड़ी बात यह बता रहे हैं, He has attained the stage of शुद्ध नाम, He is chanting the pure name of the Lord। नाम में रुचि है उसकी, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु की तुई। That is शुद्ध नाम, शुद्ध नाम उसका है ना। कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़िया सहित शुद्ध वैष्णव, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है सेड वैष्णव के। He has no attraction for कंचन कामनी प्रतिष्ठा, that's all equal to भागनी tigress। तो जिसने ये छोड़ दिया, त्याग कर दिया, जिसने परित्याग कर दिया इन सबका, वो शुद्ध वैष्णव है, छाड़िया सहित शुद्ध वैष्णव। तो यहां बता रहे हैं कि ऐसे भक्त के हृदय में अपार करुणा और दया रहती है जीव के प्रति। नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, वही श्लोक दोबारा, जीव के प्रति दया रहती है हमेशा। जो कनिष्ठ भक्त है उनके प्रति दया दिखाता है और अन्य जीवों के प्रति दया दिखाता है, दैट इज मध्यम अधिकारी। एंड हूज उत्तम वैष्णव, उत्तम वैष्णव मीन्स व्हेन द भक्ति ऑफ मध्यम वैष्णव प्रोग्रेसेस। मध्यम अधिकारी जो है वो उत्तम वैष्णव कैसे बनता है, उत्तम वैष्णव की सेवा करके। अब यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम वैष्णव जो है वो सभी को वैष्णव मानता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कौन वैष्णव है कौन नहीं वैष्णव नहीं है, वो सबको भक्त मानता है। उसको देखने में ये लगता है कि हर जीव जो है कृष्ण का नित्य सेवक है। इसलिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या करते हैं, छोटे छोटे पिल्लों को भी बुला लेते हैं, उनको भी साथ साथ प्रसाद खिलाते हैं। उनको भगाने पर वो दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बोलते जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगा, तुमने क्यों भगा दिया उसको। इस प्रकार वो कहते हैं वो सब धामवासी हैं, इस बात की वो अनुभूति कर रहे हैं और वो सबको ही वैश्य मानते हैं। और प्राकृत भक्त जो है वो किसी को वैश्य नहीं मानता, मतलब जानता ही नहीं कौन वैष्णव है, वो जानता नहीं है कौन वैष्णव है ना। तो कौन सेवा कर सकता है वैष्णव सेवा, फिर कौन वैष्णव सेवा कर सकता है? मध्यम अधिकारी को ही अधिकार है वैष्णव सेवा का। बोलेंगे हम लोग वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं, हमें तो वैष्णव सेवा में लगाया जा रहा है, कर नहीं रहे हम लोग, हमें वैष्णव सेवा में लगाया जाता है। जाओ महाराज के लिए आप प्रसाद बनाओ, जाओ उनकी सेवा करो, जाओ गुरु का आदेश का पालन करो, हमें लगाया जाता है वैष्णव सेवा। हम वैष्णव सेवा खुद नहीं करते हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी अनुभव कर लेता है, अरे ये उत्तम वैष्णव है, ये प्राकृत वैष्णव है, इसके प्रति दया दिखानी चाहिए, इसको मुझे संग देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये भी शुद्ध नाम ले सके, मुझे उत्तम वैष्णव की सेवा करनी चाहिए ताकि मैं भी उत्तम वैष्णव बन सकूं, मैं भी भक्ति में आगे बढ़ सकूं, हृदय में, मेरे हृदय में भी भाव जागृत हो, प्रेम जागृत हो। तो यहां लिखा है भक्ति और मध्यम वैष्णव प्रोग्रेसेस बियॉन्ड द स्टेजेस ऑफ साधना एंड भाव एंड कम्स टू द लेवल ऑफ प्रेम, इट बिकम्स हाईली कंडेंस्ड सांद्रानंद विशेष आत्मा, जैसे पढ़े थे पहले है ना, इट बिकम्स हाईली कंडेंस्ड एट दैट टाइम वैष्णव बिकम्स एन उत्तम वैष्णव। ये उत्तम वैष्णव की परिभाषा है। उत्तम वैष्णव कब बनते हैं? जब हमारी साधना समाप्त हो जाती है। हम लोग साधना के लेवल से परे हो जाते हैं और भाव भक्ति के धरातल पर आ जाते हैं और हृदय में पृष्ठ प्रेम जागृत हो जाता है, प्रेम के इतने ऊंचे धरातल पर पहुंच जाते हैं, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, प्रेम इतना कंडेंस्ड हो जाता है कि इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास तक नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा था सांदरानंद विशेषात में पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि इतना कंडेंस्ड हो जाता है कि जिस तरह से एक लोहे का अगर वो हो, बेल मेटल हो, उसमें आप अगर सुई घुसाना चाहें तो सुई जाएगा अंदर, सुई मुड़ जाएगी ना, इसी तरह से जो उस धरातल पर है, प्रेम भक्ति के धरातल पर है या भाव भक्ति के धरातल पर है, उसको तो रंच मात्र भी आभास नहीं होता है इंद्र तृप्ति का, ऐसा भक्त जो है उत्तम वैष्णव कहलाता है। एंड उत्तम वैष्णव परसीव दैट ऑल लिविंग बींग्स लव श्री हरि विद द सेम पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ लव दैट ही हिमसेल्फ चेरिशेस टुवर्ड्स कृष्णा। आप समझ रहे हैं? उसको लगता है जिस तरह से मेरा प्रेम है, मेरा आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति है, ऐसा ही सब जीवात्माओं का आकर्षण है कृष्ण के प्रति। ये सब देखो कितने, ये सारे जीव कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, ऐसा सोचता है उत्तम वैष्णव। इस कारण से वो खुद को दास मानता है और सबको सोचता है ये सब वैष्णव है, मैं इन सबका सेवक हूं। और यहां तक कि प्राकृत भक्त को भी देखकर वो उनकी सेवा करने लगता है, बड़ी समस्या है। तो ऐसे वैष्णव क्या प्रचार कर पाएंगे बताइए? ऐसे वैष्णव प्रचार कर सकते हैं? वो नहीं कर पाते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत के तात्पर्य में बताया है कि उत्तम वैष्णव उसको कहा जाता है जो दिन रात चिंतन कर रहा है कि किस तरह से इस कृष्ण भावना आंदोलन को मैं दर दर तक पहुंचाऊं। वो दिन रात चिंतन कर रहा है कि सबको कृष्ण है, कैसे कृष्ण की सेवा में लगाऊं। ये दूसरा तरीका है सोचने का कि उत्तम वैष्णव की परिभाषा क्या है। एक तो परिभाषा यह है कि सारे जीव कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, दूसरी परिभाषा यह है कि सब जीवात्माओं को कृष्ण की सेवा में लगाना है। ऐसा व्यक्ति जो दिन रात चिंतन कर रहा है वो भी उत्तम वैष्णव है, प्रभुपाद कह रहे हैं। बात सही है कि नहीं? और ऐसे सोचते हुए जो प्रचार के सर पर आता है, प्रचार करता है, तो वो मध्यम अधिकारी के लेवल पर आता है। लेकिन फिर भी वो मध्यम अधिकारी नहीं है, उत्तम वैष्णव ही है। लेकिन जो प्राकृत अवस्था से मध्यम अधिकारी के लेवल पर जाता है वो फिलहाल क्या है? मध्यम अधिकारी है। आगे वो उत्तम वैष्णव की सेवा करेगा तो वो भी उत्तम वैष्णव बन सकता है, जैसे कि यहां बताया है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन हिज आईज बिटवीन अ कनिष्ठ मध्यम और उत्तम वैष्णव। ठीक है ना? उत्तम वैष्णव के लिए सब एक बराबर होते हैं। कनिष्ठ वैश्य डज नॉट रेंडर सर्विस टू वैष्णव, उत्तम वैश्य डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन वैश्य नॉन वैष्णव, फॉर ही सीज ऑल जीवस आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, दिस मीन्स ओनली मध्यम वैश्य ऑफर रेस्पेक्ट टू वैष्णव एंड रेंडर सर्विस टू देम, ही सर्व्स थ्री काइंड्स ऑफ वैष्णव. मध्यम अधिकारी सर्व्स थ्री काइंड्स ऑफ वैष्णव. मध्यम अधिकारी तीन प्रकार के वैश्यों की सेवा करता है. कौन कौन से? कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव. तो तीन प्रकार के वैष्णव की सेवा करता है मध्यम अधिकारी, तो वो पहचान पाता है कि वैष्णव कौन है. और जो कनिष्ठ भक्त है उनको भी वैष्णव सेवा में लगाता है, खुद भी उत्तम वैष्णव की सेवा करता है. इस तरह से उत्तम वैष्णव की कृपा प्राप्त करके वो भी उत्तम वैष्णव बन जाता है. तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग उत्तम वैष्णव ना बन पाए तो इस जीवन काल में अगर मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाए वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है. हालांकि अगर इसको ज्यादा कैटेगराइज करना चाहें तो बहुत ग्रेड हो सकते हैं. कनिष्ठ और मध्यम के बीच में हम बोल सकते हैं कनिष्ठ मध्यम की भी एक अवस्था है, कनिष्ठ कनिष्ठ की अवस्था है, फिर कनिष्ठ मध्यम की अवस्था है, फिर मध्यम उत्तम की अवस्था है, मध्यम मध्यम की अवस्था है, मध्यम उत्तम की अवस्था है, उत्तम उत्तम की अवस्था है. ट्रांसिशन पीरियड भी होता है ना, कि कनिष्ठ अधिकारी से आप मध्यम अधिकारी बनने वाले हैं, जल्द ही बनने वाले हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? कनिष्ठ मध्यम कहते हैं. अब मध्यम अधिकारी है लेकिन मध्यम अधिकारी के लेवल पे आप बहुत उच्च लेवल पर पहुंच चुके हैं. मध्यम अधिकारी होते भी आप एडवांस लेवल पर है मध्यम अधिकारी के, तो यानी कि आप उत्तम अधिकारी बनने वाले हैं. यानी आपके स्टेज को क्या कहा जाएगा? मध्यम उत्तम. और इस तरह से उत्तम उत्तम हो जाता है. तो ये सब जो है कैटेगरीज बताई गई हैं. और मध्यम अधिकारी को इस प्रकार से देखना पड़ता है, इस प्रकार की दृष्टि रखनी पड़ती है. और हमारे पास कई शास्त्रों में उदाहरण हैं जो पहले प्राकृत अवस्था में थे और बाद में वो सब आगे चलकर महाभागवत बने. जिस तरह से गजेंद्र की कथा आती है, चार कुमारों की कथा आती है ना? और ध्रुव महाराज की कथा आती है. शौनक ऋषि आए थे सूत गोस्वामी से मिलने के लिए और ध्रुव महाराज की कथा आती है. ये सब के सब प्राकृत अवस्था में थे प्रारंभ में. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना, क्या है? फिर आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा. चार के चार क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, चारों के चारों शुद्ध भक्त नहीं है. ये चारों के चारों शुद्ध भक्त नहीं, फिर भी ज्ञानी ठीक है. ये ज्ञानी बेटर है इनसे, क्योंकि कम से कम जान चुका है कि कृष्ण परम भगवान है. वो ज्ञान के धरातल पर भक्ति करना उसे शुरू किया है. हेतु है वहां पर भी एक, बिना किसी हेतु के होना चाहिए कृष्ण की सेवा. अयुत की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे. यह है उत्तमा भक्ति. यह है उत्तमा भक्ति का मतलब है कि विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हेतु के जब हम सेवा करते हैं, ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा जाता है. तब हम कह सकते हैं कि हम मध्यम अधिकारी हैं. कम से कम जहां हेतु डाल देते हैं, कोई कंडीशन डाल देते हैं, रिजर्वेशन डाल देते हैं, कुछ होल्ड करते हैं अपने लिए, कुछ अपने अपने रिजर्वेशंस हैं, तो वहां पर फिर हमारी प्राकृत अवस्था प्रकट होती है. वहां हम लोग मिश्रित भक्त बन जाते हैं, कर्म मिश्रित या ज्ञान मिश्रित हो जाते हैं. तो ज्ञान और कर्म के मिश्रण से ऊपर उठना है और कम से कम हमें मध्यम लेवल पर पहुंचना है, निष्ठा के स्तर पर पहुंच के नाम में रुचि लेकर आनी, तब हम लोग मध्यम अधिकारी बनेंगे. नहीं तो उस स्तर तक हम लोग क्या है? केवल प्राकृत भक्ति है. तो इस प्रकार हम लोग उसका अच्छी तरह से अगर अध्ययन करेंगे जो श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है, तो उससे क्या होगा, हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारी क्या अवस्था है. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन किया सत्यराज खान को. 3 साल आए वो लगातार. पहले साल आए तो उन्होंने बताया कि प्राकृत भक्त का लक्षण क्या है. प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभा का. द लॉर्ड सेड हूएवर चैंट्स द होली नेम ऑफ कृष्णा जस्ट वंस मे बी कंसीडर्ड अ वैष्णव, सच अ पर्सन इज वर्शिपेबल एंड इज अ टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग. पूरी सभा में अगर एक व्यक्ति अगर उच्चारण करता है कृष्ण के नामों का, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो वो उच्च कोटि का वैष्णव है. फिर दूसरे साल आए तो उन्होंने और दूसरी परिभाषा दी, ये तो वैष्णव है, लेकिन उन्होंने फिर और दूसरा लेवल बताया, वैष्णोत्तर, ये है वैष्णव और फिर है वैष्णोत्तर, फिर है वैष्णोत्तम। वैष्णोत्तर का मतलब है कि सुपीरियर वैष्णव, पहले है ऑर्डिनरी वैष्णव, सेकंड इज सुपीरियर वैष्णव एंड थर्ड वन इज टॉप मोस्ट वैष्णव। तो सुपीरियर वैष्णव कौन है? अ पर्सन कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने, कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने सही वैष्णव श्रेष्ठ भजो तहार चरणे। पर्सन हुज ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज सुपीरियर वैष्णव एंड योर ड्यूटी इज टू सर्व इज लोटस फीट, दैट इज मध्यमाधिकारे। द टॉप मोस्ट वैष्णव जहार दर्शने मुखे आयशे कृष्ण नाम ताहारे जानीहा तुम्हें वैष्णव प्रधान। द टॉप मोस्ट वैष्णव इज ही हुज वेरी प्रेजेंस मेक अदर्स चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम दर्शन में पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ऐसे एक हमारे महाराज हैं श्रील सच्चिदानंद महाराज, जब वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट में थे तो उनको पता चला कि श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं, कोई सेंट आ रहे हैं, उनको नहीं पता था श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं, उन्होंने सुना कोई सेंट आ रहे हैं भारत से हैं और उनके लिए ही बहुत उच्च स्वर में संकीर्तन हो रहा है एयरपोर्ट में, बहुत सैकड़ों भक्त आए हैं उसको हरिनाम ले रहे हैं। और उन्होंने कहीं बाइबल में पढ़ा था कि एक बार किसी ने देखा जीसस को और जीसस के शरीर से जो एफलजेंस निकला उससे उस कारण से उस व्यक्ति की आंखें चली गई, अंधा हो गया, वो देख नहीं पाया, तो उनको भी डर लगा। और इन्होंने क्या किया, वहां पर जैसे आर्मी में लोग लेट जाते हैं ना, हम लोग दंडवत करते हैं, वैसे वो लेट गए, घबरा के लेट गए कि वो आए, आवाज आ रही थी बहुत, वो प्रभुपाद अंदर आने वाले हैं, उनका स्वागत हो रहा है, तो एकदम से महाराज लेट गए। और महाराज लेटे डरे डरे लेटे हुए थे, फिर सोचा कि देखे तो सही कौन है, धीरे धीरे वो उठे और जैसे उन्होंने देखा सामने श्रील प्रभुपाद को देखा तो वाकई में श्रील प्रभुपाद के शरीर से एफलजेंस निकल रहा था। बट वी आर नॉट अट्रैक्टेड बाय एफलजेंस, वी आर नॉट ब्रह्मवादीज और मायावादीज, तो लेकिन वो एफलजेंस से अट्रैक्ट हो रहे थे और इतना अट्रैक्शन उनका बढ़ा कि श्रील प्रभुपाद के पीछे पीछे चले गए और लंदन से जर्मनी तक पहुंचे, लंदन से जर्मनी तक पहुंचे और वहां उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया इसको। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कई भक्त लोगों को भक्त बनाया, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। महाभागवत जो होते हैं वो चलने मात्र से लोगों को भक्त बना देते हैं, जस्ट बाय वॉकिंग, जहां पर दृष्टि डालते हैं वही भक्त बन जाता है, दैट इज देयर पोटेंसी। किसी ने बोला कि जो है जैसे कि बताया जाता है कि नाम अपराध क्या है, अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का प्रचार करना, कनिष्ठ भक्त करेगा तो क्या होगा, वो करेगा ही नहीं पहली बार तो उसके लिए तो वर्जित है, नाम अपराध लग जाएगा। मध्यम अधिकारी तो भेद करता है, ठीक है ना, तो वो तो देखेगा किसके पास श्रद्धा है किसके पास श्रद्धा नहीं है, कौन मायावादी है कौन मायावादी नहीं है, तो सब वो देखता रहेगा। लेकिन उत्तम वैष्णव को किसी प्रकार का अपराध नहीं लगता है, क्योंकि जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, उत्तम वैष्णव महाभागवत क्या करते हैं, सबसे पहले श्रद्धा डाल देते हैं उनके अंदर, श्रद्धा जागृत करा के फिर हरिनाम सुनाते हैं उनको, और इस तरह से उनके सानिध्य में रहकर ऐसे लोग जो है बहुत जल्द ही अग्रसर करते हैं, ऐसा साधु संघ प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं। तो ये महतर साधु संघ कहा जाता है, उच्च कोटि वैष्णव का संघ। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये कुछ विवरण था भक्ति रसाम सुंदू से और श्रीमद् भागवत से और साथ में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का जो जैव धर्म ग्रंथ है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ आप पढ़ें, उसके बाद ये ग्रंथ जरूर पढ़ें जैव धर्म, क्योंकि इसमें जो नैमित्तिक धर्म है वर्णाश्रम धर्म से लेकर जीव का जो सर्वोच्च धर्म है राधा कृष्ण की नित्य सेवा, उस सब की व्याख्या श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने एक ही ग्रंथ में कर दी है। श्रीमद् भागवत को लेकर, भक्ति रसाम सिंधु को लेकर, श्री चैतन्य चरितामृत को लेकर बहुत ही रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत एक ही ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत की चर्चा करनी चाहिए। वैष्णव समाज में सिद्धांत की चर्चा नहीं होती है, सुशीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ऐसे लोग आलसी हैं, सिद्धांत बोलिया कोरे ना आलस, सिद्धांत की जहाँ चर्चा नहीं होती है आलसी लोग सिद्धांत की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उस से किताब खोलने से हमारा जो है मन नहीं लगेगा, हमें नींद आ जाएगी, तो किताब खोलने से पहले नींद आ जाती है, तो इसलिए हमें प्रयास करना है। इसलिए इसको कहते हैं वैधि भक्ति, वैधि साधन भक्ति, क्योंकि हमारे अंदर कोई आकर्षण नहीं है, तो हमें अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, भक्तों की सहायता लेनी होगी और भक्तों के सानिध्य में रहकर शास्त्र का अध्ययन करना होगा, श्रवण कीर्तन करना होगा, और जब भजन क्रिया करेंगे गुरु के आदेशानुसार तो अनर्थों की निवृत्ति होगी और धीरे 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 फिर हम लोग मध्यम धरातल पर पहुंच सकते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त ज्यादा नहीं है संसार में, हाँ ऐसा नहीं सोचे कि मध्यम अधिकारी बहुत भरे पड़े हैं, कनिष्ठ भक्तों का भंडार है, ट्रेशर हाउस है कनिष्ठ भक्तों का, मध्यम अधिकारी का परसेंटेज कम है, उत्तम वैष्णव तो बहुत रेयर माने जाते हैं। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं श्रील रूप गोस्वामी से कि भाव भक्ति जो है वो सुदुर्लभा है, सुना था ना, भाव भक्ति को ही सुदुर्लभा बता दिया, सब आत्मा सुदुर्लभा, गीता में भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभा। अभी तो हमने संसार का कोई आकर्षण देखा ही नहीं, क्या क्या आकर्षण आपके सामने फेंका जाएगा माया के द्वारा, आपकी परीक्षा ली जाएगी, तो इन सब आकर्षण से बचना होगा हमें और कर्म और ज्ञान के धरातल से उठना होगा। ये तभी संभव है जब हम किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रित हैं, शुद्ध वैष्णव के आश्रित होकर, ऐसे मध्यम वैष्णव के आश्रित होकर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और तब जाके जो है आगे कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम सोचें कि हजार कनिष्ठ वैष्णव एक साथ बैठकर जब करते रहेंगे तो कनिष्ठ ही रहेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आप इक्वल लेवल के लोगों से अगर आप संग कर रहे हैं या फिर उन लोगों से स्वंग कर रहे हैं जो द्वेष करते हैं तो आप उसी लेवल में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हजार कनिष्ठ मिलकर मध्यम वैष्णव नहीं बनते हैं, बल्कि हजार कनिष्ठ वैष्णव के साथ अगर एक मध्यम वैष्णव जुड़ा हो तब वो कनिष्ठ वैष्णव सारे मध्यम वैष्णव बन सकते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने यहां तक सुझाव दिया है जब हरिनाम होता है तो अच्छा यही है कि कम से कम एक भक्त होना चाहिए जो शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा हो, केवल माइक पर जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होगा, ड्रम या ढोल पीटने से नहीं होगा, शुद्ध नाम का उच्चारण होना चाहिए वातावरण में जो हमारे हृदय में प्रवेश करे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर शुद्ध भक्त आचार्य श्रील प्रभुपाद जैसे हम आदेश दे रहे हैं जाओ हरिनाम में और उनका आदेश लेकर हम आज्ञा लेकर हरिनाम में जाते हैं तब भी उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनकी आज्ञा हमारे साथ है। कई बार प्रश्न उठ सकता है कि ये कैसे संभव है, हम कैसे पहचान ले कौन शुद्ध नाम ले रहा है, हम कैसे आंकड़ा लगा सकते हैं, तो गुरु का आदेश लेकर हम हरिनाम में जाते हैं अगर, तो समझ लीजिए कि शुद्ध नाम हमारे साथ जा रहा है और ऐसे नाम संकीर्तन में भाग लेकर ये भजन क्रिया जो है हमें अनर्थों से निवृत्त करेगी। इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर की और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को हमें समझना है, रिकनसाइल करना है कि आचार्यों ने कोई अलग अलग बात नहीं बताई है, एक ही बात बताई है, केवल प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है लेकिन सिद्धांत कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। तभी श्रील प्रभुपाद ने कोई अलग अलग ट्यून नहीं बजाए, श्रील प्रभुपाद पार्क में बैठते थे पेड़ के नीचे, प्रभुपाद के पास मृदंग भी नहीं था, डुगडुगी थी, डमरू था प्रभुपाद के पास और डमरू लेकर प्रभुपाद एक ही धुन में उन हिप्पीज को नचा रहे थे, है कि नहीं, ना उन्होंने कोई मंत्र रॉक शो किया, ना उनके पास कोई कीबोर्ड सिंथेसाइजर था, श्रील प्रभुपाद एक सिंपल ट्यून, एक ही ट्यून गा रहे थे प्रभुपाद और एक ही धुन से श्रील प्रभुपाद ने सबको बदल दिया, कोयले के खान से हीरा निकाल दिया। तो ये है उत्तम वैष्णव का लक्षण। इसलिए जहां कहीं हमें शुद्ध वैष्णव का संग करने का लाभ मिलता है या सानिध्य प्राप्त होता है तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, अगर भक्ति में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। शॉर्टकट यही है और कोई शॉर्टकट नहीं है। साधु संग सर्वशास्त्र कोय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लेकिन क्या साधु संग का अर्थ है, हमने बताया श्री रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत में दिया है कि कैसे भक्तों का संग करने से हम लोग वास्तव में साधु संग कर रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? या फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट अस रीड आउट वंस अगेन। An intermediate or second class devotee called Madhyamadhikari first offers his love to the Supreme Personality of Godhead. That is number one. Second, is a sincere friend to all the devotees of the Lord. Third, shows mercy to the ignorant people who are innocent. Fourth, disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. These are four qualifications, or you can say four characteristics of Madhyamadhikari. एंड उत्तम अधिकारी के लिए क्या बोला यहां पर अकॉर्डिंग टू श्रीमद भागवतम, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनेश भागवत उत्तमः। द मोस्ट एडवांस डिवोटीज सीज विद इन एवरीथिंग द सोल्स ऑफ ऑल सोल्स सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड श्री कृष्ण। इष्ट देव स्फूर्ति, निज इष्ट देव स्फूर्ति, क्या होता है, स्थावर हो या जंगम हो, मोबाइल हो या इमोबाइल हो, जहां कहीं भी वो शुद्ध भक्त देखता है, उत्तम वैष्णव देखता है, उसको क्या दिखाई देते हैं, अपने इष्ट दिखाई देते हैं। यही यहां पर भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है, भूतानी भगवती आत्मनि, कॉन्सिक्वेंटली ही सीज एवरीथिंग इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। जब श्रील प्रभुपाद ने देखा सनसेट हो रहा है, सनसेट जो भी था, प्रभुपाद ने पूछा अपने शिष्यों से तुम्हें कैसा लग रहा है ये सूर्य, तो सबने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया, तो प्रभुपाद ने कहा दिस लुक्स लाइक कृष्णास आई, इज सो रेडिश। प्रभुपाद मुस्कुराते हुए बोले। फिर प्रभुपाद इन खड़े थे तमाल वृक्ष के पास वृंदावन में, और पत्ते को छूकर, पत्ते का जो अंदरूनी भाग होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तमाल वृक्ष का जो पत्ता होता है उसका जो अंदर का भाग होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, प्रभुपाद कहते हैं छूकर कि कृष्ण का जो स्किन है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही, इतना ही सॉफ्ट है। और प्रभुपाद ऐसे कह रहे थे जैसे कि लग रहा था कि वास्तव में प्रभुपाद ने वास्तव में टच करके देखा हो। तो दैट्स व्हाट यहां पर बता रहे हैं उत्तम वैष्णव, इज एबल टू कंसीव, ही इज एबल टू रियलाइज, ही इज एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड भक्ति परेशान भाव विरक्ति and understand that everything that exists in it is eternally situated within the Lord. That is Uttam Vaishnava. Yes. Prashna. Aur kuch? Yes. Yes. Question. Who? His friend. As far as I can say correctly. Oh. So, is level pe wo yeah. Not a problem. Madhyamadhikari is actually a pure devotee of the Lord, and therefore even if your spiritual master is only Madhyamadhikari, it is no problem because he can connect you to a pure devotee. Srila Prabhupada. Jaise ek petrol pump mein ek vyakti petrol de raha hai aapko. He is not the owner of the petrol pump, but he has the potency, the power to give you petrol gas. So similarly Madhyamadhikari, although he may not be fully endowed with Krishna Prem, but at least he has a potency to connect you with the pure devotee. That's why we said the Madhyamadhikari has the qualification to serve all kinds of Vaishnavas. वो कनिष्ठ भक्तों को भी सेवा में लगा सकता है और वो खुद भी उत्तम वैष्णव की सेवा कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां तक कहते हैं कि जब कनिष्ठ भक्त अपने गुरु की सेवा करने लगता है तो धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि उनके गुरु तो मध्यमाधिकारी हैं, चैतन्य भागवत कमेंट्री, और जब खुद मध्यमाधिकारी के लेवल पर पहुंचता है शिष्य, तो वो रियलाइज करता है मेरे गुरु तो उत्तम वैष्णव है। सो हाउ वी कैन जज अवर गुरु, सो ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू सी, बिकॉज स्पिरिचुअल मास्टर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज यू आई एम उत्तम वैष्णव, यू आर कनिष्ठ भक्त। बट बाय ग्रेजुअल एडवांसमेंट वी विल रियलाइज दैट ही इज नॉट ऑर्डनरी पर्सन, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। लाइक श्रील प्रभुपाद, मेनी डिसाइपल्स आर सर्विंग फॉर इयर्स टूगेदर एंड वेन देवर दे आर ड्यूरिंग हिस टाइम नाउ दे आर ऑल्सो सर्विंग, नाउ नाउ दे आर रियलाइजिंग मोर। श्रील प्रभुपाद इतने ग्रेट थे, इतने महान थे, हमने एक्सेप्ट तो पहले भी किया था, वी आर ऑल्सो अटैच बिफोर बट नाउ वी आर अटैच मोर, है ना। हम उनके पोजीशन को और ज्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं कि नॉट ऑर्डिनरी पर्सन लाइक दैट। बिकॉज प्रभुपाद व्हेन ही वाज देयर फिजिकली ही वाज नॉट शोइंग एनी एक्सटेसी और समथिंग, ओकेजनली ही वुड डू सो बट देन ही विल कंट्रोल हिमसेल्फ, बट जनरली ही वाज एक्टिंग लाइक ऑर्डिनरी डिवोटी। सो सम डिवोटीज इवन लेफ्ट, दे कुड नॉट रियलाइज हु श्रील प्रभुपाद इज, उनका सौभाग्य वो नहीं समझ पाया कि माँ भागवत, जैसे महाराज भी बता रहे थे कल, हिशोल महाराज जी बता रहे थे कि एल ए में जब श्रील प्रभुपाद लेक्चर देते थे तो कई बार होता था कि कई भक्त उनकी क्लास में सो रहे होते थे, माँ भागवत जो है प्रवचन दे रहे हैं और फिर भी नींद आ रही है आपको, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा तमोगुण क्या हो सकता है। सो वी के नॉट, मे वी मे नॉट रियलाइज द पोजिशन ऑफ माँ भागवत बिकॉज वी डोंट नो हु इज अ वैष्णव फर्स्ट ऑफ ऑल, how we can understand Mahabhagavata. But the Madhyamadhikari, when one attains the stage of Madhyamadhikari, then he is able to know. And my spiritual master is not just Madhyamadhikari, he is Mahabhagavata. Then he surrenders like anything. Yes. Actually, the standard of taking sannyasi at least must be a Madhyamadhikari. But Srila Prabhupada, still he made many devotees he gave sannyas. They may or may not be Madhyamadhikari that time. Prabhupada gave sannyas. Prabhupada took that risk to expand the movement, preaching movement. ये थोड़ा जितने लोगों ने सन्यास से सब मध्यमाधिकारी थे उसमें, दे मे बी ऑल्सो बट नॉट नेसेसरली, बट वेन प्रभुपाद गिवन अ सन्यास दैट पावर इज ऑल्सो देयर। सो इफ दे आर एबल टू मेंटेन, इफ दे आर एबल टू मेंटेन दे कंटिन्यूड, इफ दे कुडंट मेंटेन दे फेल डाउन। प्रभुपाद तो दिया सन्यास, यस। No, but there is no prem in that. By chanting Shuddhanam, you get Krishna prem. Shuddhanam means you are seeing the sun. Now you have to enter the sun planet. You have to establish relationship with the sun god in his pastimes. You don't know his swarup. As a Madhyamadhikari, you don't know his swarup. Shuddhanam here means that Chanam is free from the mixture of Jnan and Karma. That Naam is free from all material desires. No material covering is there. That is why your Naam chanting is Shuddha Naam. Aur bas. Bas. Ho gaya. Hare Krishna. So tomorrow there will be Srimad Bhagavatam class by Srila Prabhupada from 7:45 till 8:15. Then there will be a class by His Holiness Maharaj Swami Maharaj. I think on the appearance or appearance day. Appearance day of Srila Vrindavan Das Thakur. So Maharaj will also give class tomorrow morning. Hare Krishna. Or kush message? Somebody's birthday? संडे मॉर्निंग, हाय बोल, संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास बाय होलीनेस राधा गोविंद महाराज. सो टुडे इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस डे. वेर इज नित्य किशोर? नित्य किशोर कहाँ है? उनके सुपुत्र का आज जन्मदिन है ना शायद, तो उस अवसर पर उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की है, उनकी तरफ से आयोजन किया गया है, तो आप सब प्रसाद का पूरा आनंद लें और उनको आशीर्वाद दें. By chanting Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare
Hare,
Hare Ram,
Hare Ram,
Ram
Ram,
Hare Hare.
क्या नाम है उनका? गौरांगा दास की जय. हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय. एक्सीलरेट हो जाएगा अलग लेवल है ना हमारा. Then they will also come to Vaishnavism. They will also enter into Vaishnava Sampradaya. Prabhupada says that in one of the conversation, if they are praying to Christ and offering their prayers to Christ, that is also one of the limbs of devotional service. So that is the beginning of Vaishnavism. And gradually they will also come to the path of devotional service, pure devotional service. That is there.
Yeah.
Let him cut now.
He wants you
to cut. Why I should cut? This is birthday.
This
is son's birthday.
His faith will be reinforced if you do it.
His faith.